محمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الف الف مره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعليه صحبه اجمعين اما بعد جو انسان میں اللہ نے نفس پیدا کیا ہے سارا جھگڑا اس نفس کی ہے. یہ نفس جو ہے انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے, یہی شرک کراتا ہے, یہی مشرک بناتا ہے, یہی نافرمان بناتا ہے, یہی بہت بڑے بڑے گناہ کرا دیتا ہے. اور یہی نفس ہے جو صحیح ہو جائے تو اللہ سے ملا دیتا ہے. اللہ پاک نے بھی ایک عجیب چیز پیدا کی ہے نفس. کس سے نہ نفرت کر سکتے ہیں نہ دوستی کر سکتے ہیں, عجیب چیز ہے. شیطان اتنا خطرناک نہیں ہے. تو قرآن نے بھی کہا ہے اس کے جتنے معاملات ہیں سارے ضعیف ہیں, بوسیدہ ہیں, ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. بس یہ لگتا بہت مضبوط ہے, خطرناک ہے شیطان. وساوس اس کے بڑے شیطان ہوتے ہیں. اس میں وہ کیا کرتا ہے, وساوس پیدا کرتا ہے. قرآن بن ناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الوسوسے تھوٹس, جس سے آدمی گھبرا بھی جاتا ہے باس دفعہ کیا ہوگا, ایسے ایسے تھاٹ دے گا تو غافل ہو گیا, تو مشرک ہو گیا. تو اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کچھ کہنا نہیں چاہتے, اور استغفر اللہ ہمارے خیالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. تھاٹس ہیں انسان کے آتے ہیں, تو پھر وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کروں کیا, میں کس سے علاج کروں. پھر وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے, کچھ کرتا ہے, وہ جن کہتا ہے, وہ بھوت کہتا ہے, کچھ کہتا ہے. ہوتا کیا ہے, وہ شیطان تھاٹس ڈالتے ہیں انسان. پریشان کن چیز ہے بہت. ایک آدمی آپ کے پیچھے تھاٹس ڈالتا رہے الٹے سیدھے, بھائی تو یہ تو کیوں یہ کرتا ہے, تو یہ کر لے فلاں کر لے, لیکن ہیز ضعیف. ایک ہی انتظام اس کر کے زور سے آدمی دل کی طرف دھیان کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے پیچھے کیا طریقہ ہوا, کچھ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ لے رہا ہوں, بس اس سے ہمیشہ تو بچا. تو شیطان کے وسوسے جو دور ہوتے ہیں کس سے, جب انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ ملنے لگتی ہے, اس کے وسوسے ختم کرا ہوں. پھر پناہ لینے کے طریقے پتہ ہیں اللہ تعالیٰ, یہ کیسے پناہ لی جائے. اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں آپ, جب میری پناہ مانگ رہا ہے شیطان سے ڈر کے وسوسوں سے, تو پھر میری پناہ کا مطلب تو ہے تو میرا ذکر کر. سبحان اللہ,
سبحان اللہ.
اتنا ضعیف ہے یہ, اتنا کمزور ہے, کیونکہ اتنا جو قابو نہیں آتا انسان کو پاگل کرتا ہے, مشرک کرتا ہے, اپنے کہاں تک لے جاتا ہے. اس کے تھاٹس جو ہیں بڑے خطرناک تھاٹس ہوتے ہیں نا. لیکن اتنا جیسے جہاں ہی آپ نے اللہ کا ذکر شروع کیا تو یہ درک مار کے بھاگ جاتا ہے, وہ دل سے نکل جاتا ہے. حضرت مجدد صاحب قصہ سنا نا, آپ نے سناتے رہتا ہوں قصہ. کتنے بڑے شیخ تھے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ اللہ سے فریاد کی, بڑے اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ, تو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے شیطان, کیسے وسوسہ کیسے کرتا ہے, کیسے بھاگتا ہے, اس کا تو مجھے مشاہدہ تو کرا دے. اللہ والوں کی باتیں اللہ پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں اپنے دوستوں سے, उनकी नाज बर्दाश्त करते हैं अल्लाह ताला, उनकी बातें प्यार से सुनते हैं। तो बैठे थे मराकबे में, तो अल्लाह ताला ने उनको अलार्म कर दिया दिल पर कि तुम ये चीज़ देखना चाहता है कि शैतान कैसे वसवसे डालता है और कैसे जिक्र से भागता है। तो मैं तुझे दिखा देता हूँ अभी। अब कितना मुकाम था उनका, कयूम भी थे, मुजद्दद भी थे, वलियों के सरदार भी थे, कितनी बड़ी ऊंची चीज़ थी अलिफ सानी मुजद्दद, पता है। तो जब अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ठीक है फिर करते हैं, तुझे दिखाता हूँ मैं कि किस तरह मैं पनाह लेने के बाद इंसान क्या हाल होते हैं, बड़ा अच्छा सबक है इसमें हमारे लिए। अल्लाह वालों को दिखाते हैं ताकि हाँ जब हम के पास जाएं तो हमसे ये चीज़ें मिलती हैं अल्लाह वालों के पास। तो फिर जो जी हाँ मैं तैयार हूँ उनका दिखा दें कैसे होगा, कहते अच्छे फिर जिक्र बंद कर दें। क्या बंद कर? बंद कर। अब उनसे कहाँ बंद होना था, वो तो दुनिया के लताइफ को जारी करते थे माशाल्लाह, तो उनके लताइफ कैसे बंद होते। अल्लाह ने कर्म किया तो अल्लाह तो कौन करता, सब कुछ करता हूँ। अल्लाह ने जो कौन किया तो वो सारे लताइफ डब्बे हो गए, हजम बुजते बिल्कुल अंदर डब्बा, कुछ भी नहीं रहा, नाम निशान मिट गया अल्लाह का जिक्र। कितना बड़ा मुकाम था। अब दिल की तब देखने तो जिक्र गायब, जिक्र था ही नहीं। अब मुशाहिदा शुरू हुआ, क्या देखते हैं, दिल है और दिल में एक मच्छर नुमा एक चीज़ आई है, मच्छर होता है जिससे मॉस्किटो, मॉस्किटो आया और बैठा दिल के ऊपर, एक सूंड निकाला अपने इंजेक्शन जिससे लगाते और अल्लाह मुशाहिदा करा रहे थे मेरे काम ऐसे चलते हैं, मुशाहिदा करा रहे सूंड की तरह निकला जैसे इंजेक्शन लगता है, उसने दिल के अंदर डाला ऐसे करके, जैसे जिक्र बंद हुआ तो फेंक दिया अंदर, फेंका तो बस कहते हैं कि मेरे पूरे वजूद में मनफी ख्याल तो भरना शुरू हो गए सारे। अल्लाह कैसे हो सकता है, जन्नत कहाँ है, अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं समझ गया, अल्लाह से माफ़ी जो कि तौबा की कि समझ गया, मैं समझ गया समझ गया। अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर उसी मुकाम पर वापस पहुँचा दिया। तो कैसे इस तरह बचता है, इस तरह हसशाउल्लाह का वाक़ा है, क्योंकि भी दिखाया अल्लाह पाक ने कितने बड़े बुजुर्ग थे शाउल्लाह, आयत नहीं किस तरह के अल्लाह ताला शैतान मुसलत कर देते, वो क्या आयत है सबके जहन में आ रही, तबतु शैतान सूरज की आयत है ना, मुसलत कर देते हैं जिस इंसान अल्लाह जिक्र से गाफिल होता है, अनजिक्र रहमान नहीं ये है ना आयत जो अनजिक्र रहमान खुद शैतान, तो उस पर क्या करते हैं अल्लाह ताला शैतानों को मुसलत करते हैं जो इंसान गाफिल होता है। तो शाह ने शायद की तरफ देखा है कि इंसान बैठा है एक शूल है, तो अल्लाह ने मुशाहिदा कर दिया, जिक्र से गायब हुआ, जिस वो जिक्र छोड़ता है तो एक परिंदा ना हुई शख्स उसके आँख पर बैठ जाता है और उसके साथ असरात छोड़ता अंदर जाना शुरू करता है, और जैसे अल्लाह का जिक्र करता है तो वो उड़ के फिर भाग जाता है। तो ये जो शैतान का जो मामला है साबिस का, अगर इससे बचना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, मुझे बोले बातों को ही ख्याल होता है कि हम जिक्र भी करते कुछ नहीं होता, असर नहीं होता, उसकी वजह यह है कि अल्लाह सुबहान तआला के पूरे दिन का जो सिस्टम चलता है वो किस पर चलता है, यकीन पे चलता है। उसका जो यकीन है कि मेरे जिक्र से कुछ होगा तो जिक्र असर नहीं करेगा, इन अंदाज ने अब भी अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ चलता है। जिसको इस आयत पे पूरा यकीन हो गया कि यकीन अल्लाह का जिक्र ख़त्म करेगा और पूरे यकीन के साथ उस जिक्र को पकड़ लेते हैं, एक दिन असर नहीं हो रहा, दो दिन असर, तीन दिन असर, हटता नहीं है, कहता है ये इलाज, अल्लाह ने फरमा दिया इसके समय हिलूंगा नहीं, कोई सहारा नहीं पकड़ूंगा इसके बगैर, तब फिर उस पर असर करना शुरू हो जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, मुझ पर जिक्र ने असर तकरीबन आप सोच लें कि 15 साल के बाद करना शुरू किया। कितने साल और किसकी सोबत में बैठ के मैं जिक्र करता था, आप ये देख लें, वक्त का गौस था जिसके साथ बैठ के मैं जिक्र करता था। ऐसा हाल हो जाता था मेरा कि मैं ऊपर से लेकर जिसम में जिस जगह बैठता था ना, वैसे भी गर्मी थी वहां, पसीने पसीने होता था, और मैं कहता अपने ख्याल में कहता हजरत मदद फरमाए मेरी, और हजरत मेरी मदद नहीं करते थे, زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں, ذکر میں بیٹھا ہوں اپنے شیخ کے ساتھ اور اس کی وسافس جو ہے وہ مجھے اتنا تنگ کر دیا وسافس نے کہ میں پسینے شرابور ہو کے میں بھاگ جاؤں, بہت عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. اب میں اندر سے اپنے حضرت سے کہہ رہا ہوں حضرت میں آپ کے پاس ہے مجھے توجہ فرمائے, مجھ پہ کوئی رحم فرمائے کچھ ہو, میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت سے کوئی توجہ نہیں آ رہی. کتنا اس میں ایک سبق تھا کیا کہ یقین بڑھنا چاہیے آدمی کا. تو میں نے اپنے یقین کو اس درجے پہ لے گیا اللہ کے فضل اس کے کرم سے کہ میں مر جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا لیکن میں نے یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں. اور لگتا تھا شیطان مجھے چھوڑے گا. 15-20 سال کے بعد ریلیز ہونا شروع ہونا, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا عرصہ تھا آپ کو سے, اور وسوسے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے آدھا گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, بڑی بھی آ رہی ہے نا بھائی. تو وسوسے کا واحد علاج کیا ہے اللہ کا ذکر. اور ذکر کب فائدہ دے گا, کون سا ذکر فائدہ دے گا, جب انسان استقامت اور یقین کے ساتھ جم جائے گا اس پہ کہ جس کا اللہ نے علاج کہہ دیا اس کے علاوہ دوسرا علاج نہ گولی سے ہوگا, نہ ڈپریشن سے ہوگا, نہ کسی سائیکوٹسٹ سے ہوگا, نہ پکڑ خانے میں جا کے ہوگا. علاج ہوگا تو واحد ایک چیز سے ہوگا, اور وہ کس چیز سے؟ لیکن افسوس ہے انسان اللہ یقین بناتا ہے پہلے, اتنا سستا نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا اپ کر. یاد رکھیں جب ایک چیز نص سے ثابت ہے ہمارے پاس, قرآن نے بتا دیا صاف واضح طور پر کہ یہ ایسے ہے اور چیز ہم تک پہنچ گئی کہ بس یہ ایسے ہی ہے, اس کے بعد مر جائے آدمی تباہ ہو جائے جو کچھ بھی ہو جائے اس راستے میں, لیکن اس راستے کو نہ چھوڑو جس کو اللہ نے بتایا کہ تم یہ چیز یہیں سے ملنی ہے. زندگی کے اصول بنا لیں دوستو, اور یہ زندگی انسان کی ہے, اسی یقین کو اللہ پسند فرماتے ہیں. چیز تو نفس یہ کون تھا؟ شیطان تھا. لیکن اس کا گرو گھنٹال, گرو گھنٹال سمجھتے ہیں جو مہا بدماش, مہا کتنے شیطانوں کو نکال لے کے لے جائے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آج جتنے بھی ہم بندر ہوئے بنے ہیں, جو دین کے ہمارے حالات ہیں, پوری دنیا کے اندر ہمارے جو حالات ہیں, یہ شیطان سے نہیں ہے. کس سے ہیں؟ شیطان سے ذکر کیا بچ گئے, نفس تو ذکر کے قابو بھی نہیں آتا. نفس ذکر کے قابو بھی نہیں آتا, وہ تو شیطان کو پیچھے کر دیتا کہ تو تیرے قابو نہیں آ رہا, یہ آدمی تو پیچھے ہٹ, میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, میں اس کو کراتا ہوں, دیکھ زنا دیکھ کس نے جلدی سے کراتا ہوں. تو وہ تو کہہ جا رہا ہے نا, اس سے وہ بس میں ڈالتا ہے یا کر لے, لڑکی بہت خوبصورت ہے, یا چلو یہ بات کرتے ہیں. وہ تو ایک گھنٹے لگا رہا ہے, تو دیکھ میں اس کو کیسے چند دیر میں دیکھا میں اس کی کیا نکالتا ہوں, سب بزرگی ایک منٹ میں, نماز فارغ کرتا ہوں میں اس کو, میں لاتا ہوں اس کو زنا کی طرف, چھوڑ دے. تو نفس بہت بڑی چیز ہے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر بندہ ایک کام کر لے, ایک کام کر لے کہ بھائی میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اگر بات ماننی ہے, اگر میں نے بات ماننی ہے سبحان اللہ, تو میں ایک ہی ذات کی بات مانوں گا اور کسی کی نہیں. وہ کون؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے بتخصو کہ جو میرا محبوب تمہیں کہے وہ کر لو, جس سے تمہیں کہے رک جاؤ اس سے رک جاؤ. مختصر اللہ پاک نے اس چھوٹی سے آیت میں نفس کی بربادی کا پورا سامان پیدا فرما دیا. بننا نفس کا ہے, کتنے مجاہدات آپ کے, کیا کہ ہم ایک فیصلہ کر لیں زندگی کا دوستو, ये काम है, यही बात बता रहा हूं कि बात किसकी माननी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सुन्नत शरीफ के साथ, शरीयत के साथ। और दूसरी बात किसकी होगी, नफ्स की होगी कि कितनी खैर नजर आए, कितना उसमें मजा नजर आए, किसमें कुछ नजर आए। हमने इस नफ्स की बात को नहीं मानना, बात जो माननी है तो हमने किसकी माननी है, नबी करीम से उसमें बात माननी है, बस इतनी सी बात है। जिस वक्त इंसान तैयार कर लेता है कि मैं नफ्स की बात नहीं मानूंगा, एक दिन गुजार के देखें आप कि नफ्स की बात मैंने नहीं मानी, सुबह से उठे जब आप तो नियत कर लें आज सारी बातें किसकी मानूंगा, नबी करीम सल की बातें मानूंगा, जिस तरह आप फरमाते हैं वैसे ही करते चला जाऊंगा, नफ्स की बात मैंने आज बिल्कुल नहीं माननी। आज सरकार फरमाते हैं कि तुम्हें नहीं कुछ खाना मैं खाऊंगा नहीं, आज तुम सोना नहीं तो मैं सुख सोऊंगा नहीं, इस टाइम तुमने ये काम नहीं करना, उस टाइम वो काम नहीं करूंगा। जैसे जैसे नबी करीम सल जिस जिस टाइम के मुताबिक मुझे जिंदगी कहेंगे गुजार, पूरा एक दिन तुम उसी तरीके से जिंदगी गुजार सकते, इस चीज़ को तुमने हाथ नहीं लगाना, इस चीज़ को तुमने देखना नहीं है, इस चीज़ को तुमने ये नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह ने इंतज़ाम ऐसे किया है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है पूरी जिंदगी की कि जिसके बारे में नबी करीम सन इंस्ट्रक्शन ना दियो कि ये कर लो और ये ना करो, है या नहीं भाई, ये पूरा दीन है हमारा, ये है दीन। किसी नबी किया ऐसी शरीयत नहीं है, ऐसी सुन्नत नहीं है, जो अल्लाह ने ऐसे इंतजाम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज को जाहिर कर दिया, पहुंचा दिया, इतने सालों के बाद आप बोलते हैं कोई मुसलमान है वहां भी पहुंचेगा, अमेरिका में कोई मुसलमान है वहां भी पहुंचेगा, आयरलैंड में कोई मुसलमान है वहां भी पहुंचेगा, अल्लाह के नबी करीम सब की बातें सारी पहुंचेंगी। अजीब अजीब नुमाइंदे होंगे, अगर उन लोगों को पता नहीं होगी तो अल्लाह ताला ऐसे मुल्क से आदमी भेज देगा, उनके साथ ऐसे काम लगा देगा, जाओ फला मुल्क में जाओ वहां चंदा मिलेगा, वो वहां आ जाएंगे और वहां चंदे के साथ साथ वो दीन बताना शुरू कर देंगे कि नबी पर हमने सुन्नत ऐसा किया। ये बड़े अच्छे नुक्ते की बात है कि जब भी आजाद कोई आए तो दीन साथ लेकर आए, साथ में चंदा लें और साथ में सुन्नतों की बातें बता के जाए। ये सोच के आए इस मुल्क में कि हम एक ऐसे मुल्क से आ रहे हैं कि जो मुंबई इस्लाम है यहां से दीन निकला है, यहाँ पे हदीसें पढ़ाई जाती हैं, यहाँ पे शरीयत पढ़ाई जाती है, हम लोग माला माल है इस चीज़ से, लेकिन जिस मुल्क में दौलत लेने जा रहा हूँ इस मदरसे को चलाने के लिए, वो इतने आगे नहीं है, वो तो अंग्रेजों उस माहौल के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनकी तहजीब मुख्तलिफ है, तो मैं क्यों ना करूँ ये काम कि साथ में अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कुछ लेकर भी आऊं और वहां दीन फैला कर भी आऊं। बोले सुभान अल्लाह, माजत साथ करता हूँ, आते हैं हमारे आजाद आके चंदे की बात करके चले जाते हैं, बड़े शाम को बड़ा नहीं कहेंगे, आओ मैं तुम्हें एक सुन्नत भी बताता जाता हूँ। सुबहान क्या कहें, सब पे सुन आए भाई आप आजाद तो यहाँ बैठे हैं तो हम तो पढ़ लें आज नबी बंक में, आपको पहले सुन्नत बताता हूँ क्योंकि सुन्नत ही वहाँ फैला रहे हैं, उसी के लिए मैं लेने आया हूँ, तो पहले यहाँ क्यों ना फैलाऊँ। सुबहान अल्लाह, आज तक देखा आपने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा ना, ये हाल है हमारे उम्मत का, अपना अपना फिक्र। ये किसको क्या कहते हैं, नफ्स। हर अदारा, हर कौम, हर चीज हमारी किस पर चलती है, नफ्स, क्योंकि नफ्स ने सबक ही ये दिया उसको। अगर हम देखते कि नफ्स की बात ना मानता वो और मानता किसकी, नबी कस्म की बात मानता, तो सबसे पहले नबी की बात ये मानता कि तुझे मैं भेज रहा हूं नुमाइंदा दीन बना के, तूने दीन को फैलाना है, दीन को तू फैला, तेरे जेब को पैसों से मैं भर दूंगा। लेकिन उसको पहले जेब का ख्याल होता है कि यार दीन तो फैला रहे हैं मौलवी साहब बैठे ना, ये जो बैठे हैं मेंबर पे, इनके सामने बिल्कुल ना सोचें, आप सोचें मैं ऐसी जगह से आ रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने भेजे नुमाइंदा बना के, मैं आलिम इसलिए बना था, मेरे मुंह से जो सुन्नत की बात निकलेगी, शरीयत की बात इनके दिलों पर ऐसे शब्द हो जाएगी कि इसमें बहुत से लोग बामल हो जाएंगे। मैं तो बांग दोहल कह देता हूँ लोगों को, लेकिन लोग कहते भी ना ये बात, शर्माते हैं, नाराज हो जाएंगे, नहीं नाराज नहीं हो जाएंगे, मैं तो उनसे दुआ नहीं लूंगा, वो तो मुझे दुआ देंगे, हमारा काम बना दिया कि पैसे ही मिलेंगे और काम भी बनेगा। तो अंदर ऐसा होना चाहिए भाइयों, किस तरह ये पैगाम पहुंचाएं हम लोगों को, जो सा कि हम बिल्कुल नाबल्द हैं, जाहिर हमने यहाँ जो हदीसें पढ़ी हैं आपने उस कुछ और रंग में हदीसें पढ़ी, हमारे मदारस हैं सब कुछ हैं, लेकिन जो रंग वहाँ का है सहारनपुर का देवबंद का, मुझे बताएं वो रंग यहाँ हो सकता है? बड़ा मुश्किल है। तो जिस रंग में आप आगे हमें बताएंगे खालिस चीज, तो हम पर बहुत जल्दी असर करेगी वो चीज। आपको भेजा इसलिए, आया आप इसलिए, टिकट आपको इसलिए दिया गया। मैंने सुबह में बात सुन रहे मेरी, तो बात कर रहा था किसकी? नफ्स की। एक मिसाल दी मैंने आपको नफ्स की, छोटी सी, कितना इलम होता है कुछ, लेकिन नफ्स की बात में डोल होता है, कमा सकते हैं, नफ्स ने कमाने नहीं दिया। तो भाई नफ्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? खुलासा किया, किस चीज से? सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कहना है कि तेरी बात नहीं माननी, बात किसकी माननी है? नबी की। नहीं कि जी बात बता दूँ, मोहब्बत की बात भी कुछ दिल में आ रही है मेरे, ये सूफी वाली बात शुरू होने वाली है। पहले तो डराता हूँ सूफियों की बात में, मुझे थोड़ी देर, असल तो हम सूफी ना, लड़ने झगड़े थोड़े करते हैं, हम तो प्यार मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। अब प्यार की बात करते, अगर हम नफ्स देखें, तो आपने अल्लाह की कितनी बातें सुनी होंगी, वलियों की बातें सुनते हैं, कैसे कैसे किस्से हैं, किताबों कितने कितने मुकाम बताए जाते हैं, सबको जो मुकाम मिला ना भाइयों, जो भी वली अल्लाह बना है वो एक बात से बना है कि उसने अपने नफ्स की मुखालफत की है। बोले सुभान अल्लाह, वल्लाही कोई इबादत से नहीं बना, हमें पता ही नहीं, किसी वली से पूछने कि तेरी नमाज कबूल होगी, क्या पागल हो गया, तेरे पास क्या गारंटी नमाज कबूल? मैं तो नमाज के बाद काफी देर रोता हूं, मुझमें सिफ्त पैदा हो गई है कि तू तो नमाज पढ़ के भाग जाता है, लेकिन मुझमें अल्लाह ये सिफ्त पैदा कर दी है कि मैं फिर रोता हूं, कहता जो तूने नमाज पढ़ाई ये कबूल होगी भी या नहीं होगी? नमाज में अगर 10 मिनट लगते हैं तो उस बात को मनवाने में कि मेरी नमाज कबूल कर लेना आधा घंटा लगता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान होती है कि जो चीज तोहफा पेश किया ना अल्लाह को, फिर रोते हैं कि अल्लाह ताला कबूल करेगा नहीं करेगा, देने में 15 मिनट लगे, रोने में आधा घंटा लगता है, कि पढ़वा तो दिया लेकिन अल्लाह कबूल भी कर लेना, अल्लाह कबूल भी कर लेना, मेरे मौला पता नहीं मैंने क्या पढ़ाया, कबूल भी कर ले, वो इसी बात पे रो जा रहा है। अल्लाह वाले को अजीब बात, तो ये अल्लाह वाले जितने बने हैं किस चीज से बने हैं? मुखाफत नफ्स से बने हैं, जिन्होंने नफ्स को बात नहीं मानते, इससे इंसान अल्लाह का वली बनता है। अगर आपको शौक है अल्लाह का दोस्त बनने का तो ये काम शुरू कर दें, ये रास्ता बता रहा हूं मैं आपको, किसकी मुखालफत करनी है, जिसकी ट्रेनिंग होने वाली है अभी 2 महीने के बाद, जिसे रमजान कहते हैं, ये अल्लाह ने जो रमजान दिया सूफी बनने के लिए दिया है, और जो इस नियत से रमजान में दाखिल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वली बन के निकलता है, और घंटी दे रहा है रमजान इस चीज की, मुत्तकी तैयार करता है रमजान, वलियों को तैयार करता है, बड़े बड़े औलियाल्लाह पैदा हो जाते हैं इस 30 दिन के अंदर, दाखिल होते हैं गंदे मंदे बुरे हालात में, और जब निकलते हैं तो औलियाल्लाह की मोहरें लगी होती हैं। क्या इबादत की उन्होंने? वही नमाज पहले पढ़ते नहीं, उन्होंने एक बड़ी इबादत की जो सारा साल नहीं करते थे, वो क्या थी कि नफ्स की मुखालफत कर चले गए, सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने एक ही काम किया, तेरी बात नहीं मानी, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं पीना, मैंने अपनी हलाल चीज हराम कर दी, जो चीजें हलाल थी वही हराम हो गई, कहता नहीं मैंने नहीं करना, क्यों कर नहीं, बस मैंने नहीं करना, मेरे नबी ने मना फराया, और फिर डरते ऐसे इससे कहीं रोजा ना टूट जाए, चाहे इससे कहीं ये ना हो जाए, कितना खौफ और तकवा पैदा हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, ये है रमजान, तो अल्लाह का वली ना बने तो क्यों ना बने, लेकिन ऐसे बंदर हमें कि 30 दिन के बाद हम सोचते नहीं अल्लाह ने हमें क्या बना दिया, हम फिर वही बन जाते जो पहले थे, ऐसे पक क्यों, हम सोचते सवाब कमाने के लिए रमजान दिया, वो अल्लाह के बंदे सवाब कमाने के लिए नहीं दिया, अल्लाह तो अपना दोस्त बनाना चाहता था तुम्हें, ये ना बात। तो जो अकलमंद लोग कहते हैं नहीं, एक रमजानी तो पूरा जिंदगी रमजान की तरह गुजारनी चाहिए, कि जिस वक्त मैं से जाऊं तो नारा पड़े या ही नफ्सुल मुतमइन्ना अर्जी रब्बी का मतलब कुरान के साथ, हे तू निकल आया रमजान से, आ इस तरह आ जा, तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी, زیادہ تر مرد ہے یہ اصل رمضان سے نکلنے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی پوری رمضان میں گزاری ہوگی. کیسے رمضان گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ نفس کی مخالفت. تو جس نے پوری زندگی نفس کی مخالفت کی ہوگی وہ رمضان میں رہا. جس نے یہ پیغام ہے رمضان کا کہ جس نے اپنی نفس کی مخالفت کی زندگی گزاری تو وہ پورے رمضان میں ہوتا ہے. پوری زندگی رمضان ہوتی ہے اس کی. اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. یاد رکھیں میری بات. غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ چبھ رہی ہیں دل میں باتیں میری؟ اتر رہی ہیں نا؟ تہ زندگی ہے کتنی بھائی ہو؟ زندگی اتنی ہے. آپ مشکل سے 5 سال نکلتے ہیں زندگی کے، 4 سال نکلتے ہیں زندگی کے، اس سے زیادہ نہیں نکلتے. اور کتنی زندگی ہے؟ تو اگر تھوڑی سی زندگی اس طرح گزارنے کے صرف ہم نے نفس کی کہنا مان کے نہ زندگی گزارنی ہے تو بس ختم. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان، اب پیار کی بات سناؤں آپ کو، دیکھیں کیا ہے کہ جب انسان نفس کے باتیں نہیں مانتا اور اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ نفس کی بات نہیں ماننی، میں اب نہیں مانتا نفس کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا فرما دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ ایک انعام دیتے ہیں اس کا، ایک انعام ہے یہ بھی، مطلب یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. اس بخار اس آدمی میں ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے حضوری. تصوف کا لفظ کیا کہا جاتا ہے؟ حضوری قلب. یہ کہنا زندگی سمجھ لیں، حضوری کی سمجھ لیں سمجھیں، ایک زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، روحانی زندگی دیتا ہے، خود بخود اس کے اندر ودیت کر جاتی ہو. یہ ایک انعام مل رہا ہے. جب آپ نفس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو اللہ ایک انعام دے گا کہ آپ کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دے گا، حضور پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر، اور ہر ولی اللہ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. بولے سر، اس میں کیا ہوتا ہے حضوری سے؟ جب یہ چیز نور، نفس کی مخالفت نہ کر کے جب یہ نور پیدا ہوتا ہے، حضوری کیا چیز ہوتی ہے؟ حضوری یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو، اس کا جو دل ہے وہ تجلگائے، جلوہ گائے ربانی بن جاتا ہے. اب اس کی کیفیت یوں ہو جاتی، یہ کہ ایک ہی نام ہے صرف نفس کی بات نہ مانے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اندر سے اس کی حضوری ایسی ہوتی ہے کہ کبھی وہ مدینے پہنچ رہا ہوتا ہے، کبھی مکہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اب اس کی کیفیات ہی ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں میں جاگتے دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ علام ہے یا حقیقت ہے. تو بعض دفعہ تو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید میں پہنچ بھی گیا. آب زمزم پی رہا تو ہاتھ ایسے ہلنے بھی لگتا ہے اس کا. اب یہاں آپ دیکھیں گے بزرگوں کے قصے آپ پڑھیں تو بڑے بڑے آپ کو قصے نظر آئیں گے اس حضوری کے، عجیب عجیب قصے نظر آتے ہیں. ایسے ہی کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ، کال پہلے پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ ان کی حضوری کی کیفیت کیا تھی. وہ اب یہ حضوری کی بات کر رہا ہوں، کیفیت کیا تھی کہ جاگتے بھی ہو سکتی ہے، سوتے بھی ہو سکتی ہے، دیکھتے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس میں یہ حضوری خود نہیں پہچانتا، پہچان سکتا کہ یہ کیفیت میری ہے کیا. پر سبحان اللہ. اب علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحے بھی نبی پاک کو دیدار نہ کروں تو اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں. سبحان اللہ، عجیب کال ہے بھائی. تو اور ایک تو یہ بھی کال ان کا ہے کہ 70 بار جاگتے ہوئے میں نبی پاک کو زیارت کی ہے، مسائل پوچھے ہیں. بعض بزرگ تو کہتے ہیں نبی پاک سے، ہمارے قابلین کی باتیں بتا رہا ہوں میں. جی کیا ہے؟ انعام ہے جو انسان نفس کی بات ماننا چھوڑ دے، دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ نبی پاک ابھی میرے سامنے ہیں، ابھی میں سے، یعنی اتنی حضوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، آپ انداز انسان کی کیا قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک نفس کتنا انسان کو گرا کے رکھتا ہے، کتنے اندر اللہ نے ہماری صلاحیت رکھی ہیں، اس دل کے اندر کیسی کیسی روشنی موجود ہیں، اس کی کتنی وسعت ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ نبی پاک میں دیدار کرا دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، باتیں گرا دیتا ہے مسائل, یعنی ایسی اتنی اللہ نے اتنی استطاعت رکھی ہے اس انسان کے اندر, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی اللہ نے اتنی زندگی ہمیں دی ہوتی ہے, لیکن نفس کی بات مان مان کے ہم نے ساری چیزوں کو گھٹے میں ڈالا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں بس کھا لو پی لو روٹی کما لو بچوں کو بس پرورش کر لو, یہ حقوق ہیں ہمارے جدا کر رہے ہیں. ہم حقیقت اسلام سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک مومن کی زندگی تو الحمدللہ سے ہی ہے کہ وہ تو دنیا میں سے جب جنت میں جائے گا تو وہ سمجھے گا مجھے ٹرانسفر ہوا ہی نہیں, ابھی پتہ میں یہی گھوم رہا ہوں. یعنی اتنی خوبصورت یہ دنیا اس کو لگتی ہے, اتنا آرام دہ یہ زندگی بن جاتی ہے اس کی. نفس کی مخالفت کے بعد کو نفس کی بات نہیں مانتا ہے, اللہ اللہ کے نبی کی بات پہ چلتا ہے, تو یہ عجیب و غریب دنیا اس کے لیے بن جاتی ہے. دنیا اس کو تکلیف میں سمجھتی ہے, وہ کہتے ہیں اس سے بڑی راحت ہے ہی جتنی بات میرے پاس موجود ہے. آج تک کسی بھی آپ اللہ کے اللہ والے کو شکوا کرتے نہیں دیکھیں گے, زبان پہ شکر ہی دیکھیں گے. ڈرو تم بھی, میں تو بڑے مسئلے ہوں بھائی. ایک بادشاہ کہتے ہیں میں یہ ہوں فلاں, وہ فقیر کو دیکھا ترس کھا رہا ہے, کہتا ہے مجھ پہ کیوں ترس کھا رہا ہے, میرے پاس تو وہ چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے, تیری سلطنت پتہ نہیں کب ختم ہو جائے, پگل اپنے آپ پہ ترس کھا, تو مجھے تیرے نہیں چاہیے پیسے تیری زمین ہے, رکھ اپنے پاس بھائی. تو ایک دم حضرت کے پاس آئے دو صاحب, تو کئی سالوں منسٹر بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور منسٹری تک پہنچ گئے ہیں, کہ نام ذوالفقار تھا, ایک نام لغاری صاحب تھے, بڑے بڑے عرصے تک وزیر اعلیٰ وزیر پنجاب اور پتہ نہیں کچھ ملک کے اندر رہے. میں خیال اتنا بڑا سوٹ کیس تھا کوئی, پتہ نہیں کوئی دل حضرت کے دعا لگی ہوگی تو اس کے لیے احسان بدلنے آئے تھے, اتنا بڑا سوٹ کیس تھا پورا اوپر سے نیچے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا, میں وہاں موجود تھا. حضرت سٹیج بیٹھے تو اندر آئے کہ حضرت کچھ لوگ ملنے ہیں. کون ہیں؟ کہ سردار صاحب آئے جی, وہاں سردار کہا جاتا ہے بڑے لوگوں کو. کون سردار صاحب ہیں؟ کہتے جی سردار فلاں. تو کہتے اچھا میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ٹھیک ہے اس دن آئے تھے میں نے دعا کر دی تھی, تو اب کیوں اب کس لیے ہیں؟ کہتے جی بس, کہتے ہیں ہمیں صرف پانچ منٹ ملنا ہے. کہتے ہیں آپ بلا لیں. آگے بیٹھے تو بیگ ان کے ہاتھ میں تھا, انہوں بیگ کے سائڈ پہ رکھ لیا, تو حضرت نے ایسے دیکھا اپنی زبان میں کہا ایک کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا, اور آدمی ایک تو بیٹھے تھے, میں تھا ایک اور آدمی تھا, یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا. کہتے یہ کیا ہے سردار صاحب؟ کہتا ہے حضرت صاحب کچھ نہیں, حضرت صاحب یہ تو بس ایک تھوڑا ہدیہ ہے نذرانہ ہے. کہتے یہ اتنا بڑا ہدیہ, اتنا ہیوی ہدیہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, یہ کیسا ہدیہ آپ لے کر آئے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو دوسرے صاحب تو کہنے یہ بس کچھ ہدیہ ہے جناب, اس نے تھوڑا کھول کے دکھا دیا. تو حضرت ایسے جھڑک لگا حضرت کو. اب وہ تھے جن کو تین تین چار دن روٹی نہیں ملتی تھی حضرت کے گھر, کھانا نہیں چلتا تھا, چولہا نہیں چلتا تھا, غربت کا بتا رہا ہوں حال, فل برابر نوٹوں سے تھا وہ. تو حضرت نے ایسے ہاتھ اٹھایا ان کا کہ سردار صاحب یہ بھی اٹھائیں آپ بھی, آئندہ کے بعد میرے پاس تشریف نہ لائیں آپ, میں غریب آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں, تو مجھے ایسے رہنے دیں, میں امیروں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ فکرت ہے کہ آپ کی میری دوستی کیسے چل سکتی ہے, آپ امیر آدمی ہیں میں غریب آدمی ہوں, بس آپ دعا کرانے آئے تھے میں نے کر دی, یہ آپ لے جائیں اپنا بھی پچھلے آندہ تشریف اپنا لے جائیں. پکڑا بیگ اور چلے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تو مقام. اب میرے حضرت کی بات آ گئی. آج کل پاکستان میں وائرل چل رہا ہے ایک کیا کہتے ہیں وائرل کہتے ہیں جو سی ڈی چل رہی ہے کیسٹ چل رہی ہے پاکستان میں, میرے پاس پہنچ گئی حضرت کے بارے میں. کوئی بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے, سب اپنے نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے ایک تقریر کر دی, آج کل چل رہی ہے پاکستان. ہمارے حضرت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, پاکستان میں نہیں جانتے. میں نے بتایا بہت گمنام آدمی تھے, خانقاہ بھی ان کو بہت دور تھی دیراز خان کی بستی کے اندر. یہ تو مجھے نکالا تو کچھ حضرت کا نام پھیلنا شروع ہو گیا. میں نے حضرت بہت خاموش آدمی تھے, کبھی نکلتے تھے, ایک سفر ہوتا تھا حضرت کا اپنے گاؤں سے سیدھا عمرے پر یا حج پر, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کس نے حضرت سے کہا حضرت آپ اللہ نے آپ کے ساتھ اتنے بڑے آپ اللہ والے ہیں, آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تو بڑے ہنس کے کہنے کہ جب اللہ میرے پاس بندے بھیج دیتا تھا مجھے نکلنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر میری طرف مسکرا کے دیکھا کہ یہ جائے گا خود ہی کام کرے گا, میں بھیج دیا آدمی میں کیوں جاؤں, مجھے کیا ضرورت ہے میں جا کے پھروں. ہو گیا نا آپ جمع ہیں. ये कितनी बड़ी बातें करते हैं हजरत वाले, और ये सुख बातें करें जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था। हंस के उसके जवाब दिया, मेरी तरफ इशारा किया कि मुझे जरूरत किया जाने की, जब अल्लाह से भेज देते आदमी, तो उसने मेरी तरफ देखा कि कौन सा आदमी भेजे, ये क्या करेगा आदमी, इसकी ना शक्ल ना सूरत ना आलिम ना जाहिल आदमी, इसके बारे में बड़े बड़े आलू उमड़ा बैठे थे वो सब हंस पड़े। तो हंस खामोश हो गए। आज वो इल्म कलाम वाला हम तो जब मैं जाता हूँ तो खड़े हो जाते हैं सारे पीछे, लेने आते ज़ियारत के लिए देखने आते, क्योंकि उनकी यकीन कहते हैं क्या हमारे हजरत ने कैसी बात की, कैसी बशारत दी थी। आप देखें अभी तो निकलना बंद हो गया, आपको पता है पूरी दुनिया के चक्कर मारे हमने, तो 200 आदमी था मैं पैरिस के अंदर घूम रहा था, कुछ लोगों से जमात निकली थी हमारी, औरतों की और मर्दों की जमात लेके चलते थे माशाल्लाह, बाकायदा श्री के साथ पर्दे और सब कुछ, बच्चे हमारे इमाम के साथ 200-250 आदमी कहाँ घूम रहा है वो पैरिस के कौन से बड़े सबसे बड़ी जगह में याद नहीं आ रही सर, एलिफेंट टावर दरवेश वहाँ घूम रहे हैं, और नमाज का टाइम हो तो मेरे का जान दे के वो सब नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ टीवी आ गए, कैमरे आ गए। ये अच्छे ज़माने की बात कर रहा हूँ जब तक ये गंदबाजी नहीं फैली थी, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, दुनिया आ गई जनाब, टेलीविजन के लोग आ गए, कौन सी कौम उतर रही है, क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर, यकीन करें वहाँ के जो बेस्ट अखबार थे फर्स्ट पेज पे हमारी खबरें निकली। कहा ना हजरत ने बात सच की थी ना, फिर आप देखें दरवेश का कहना होता कहते मुझे क्या, तो वो बहुत छुपे थे, तो वो अवैल हुई आज की उनकी एक सीडी, वो मैं बता रहा हूँ हजूरी देखे आप। तो ये क्या किस्सा था हजरत का बताया जा रहा, वो उलमा बताया फैली गई ना बात, एक ही एक तो निकली हजरत की जो करामातें थी इस किस्म की, जो कश्फ समझते हैं बहुत कम हजरत बताए, कोई भी नहीं बताया। तो हजरत ले गए तशरीफ, मदीना तशरीफ ले गए थे, तो हक से जाते थे, मैंने कहा बहुत फकीर फाका था वहाँ तो कुछ नहीं था, तो गए खाने की रोटी नहीं थी कुछ भी, खाते का पूरा हफ्ता गुजर गया कुछ भी नहीं, पैसे नहीं जाकर रोटी खाने गई, बच्चे भी साथ थे, तो इसी हाल में लेट गया मदीना मुनव्वरे में मस्जिद तो में लेट गया हजरत, तो लेटे वही बता रहा हूँ हजूरी की बता रहा हूँ, तो नबी वहाँ तशरीफ ले आए। अब ये देखना ज़ियारत था ख्वाब था क्या था, ये तो हम नहीं कह सकते, मैंने कहा हजूरी की कैफियत आप नहीं बयान सकते, बस बुजुर्गों की बातें सुन लिया करें टटोला ना करें। ये कैसे देखा, ये क्या हुआ, कभी हमने किसी शेख से ऐसी बातें करते हमने बात नहीं की, जब किसी ने भी अपना कष्ट सुनाया मानो उसको मान लिया, बस हम समझ गए हजूरी की बात है, सबने मान लिया, अल्लामा सूती की बात मान ली ना कि 70 बार ज़ियारत की सब चुप है, कोई नहीं पूछता किस तरह की जी कैसे की फला की आंख खुली थी सोए थे नहीं की, बस हजूरी की बात थी किस तरह की अल्लाह ही जानते हैं, कैसे लोग ये ज़ियारतें करते हैं कैसे नबी से तशरीफ लाते हैं किस तरह बातें होती हैं हम इस कैफियत को नहीं जान सकते। कितने पता है कि इनका इनाम किस लिए मिला, ये चीज़ क्यों हुई है कि उन्होंने नफ्स की बात माननी छोड़ दी थी, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आज हम में भी वो सलाहियत हैं बोल्टन वालों, हम में भी वो सलाहियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम एक एक लम्हा हमारा जो गुजरता है जिंदगी का ना नफ्स की बातों के साथ गुजरता है, जिक्र भी करते हैं कुरान भी पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं हदीसें भी पढ़ते हैं, लेकिन बातें किसकी मानते हैं सही बताना, नफ्स की मानते हैं, अभी जिक्र करके जाएंगे सब कुछ बात किसकी मानेंगे नफ्स की मानेंगे, कभी नहीं सोचा कि प्यारे नबी ने इस वक्त क्या कहा कि तू ये काम कर ले, कभी नहीं सोचा प्यारे नबी ने क्या कि उठ के तू सूरह यासीन पढ़ ले, कभी नहीं मानेंगे हम सूरह सजदा पढ़ ले, नहीं यार थके हैं जिक्र करें ड्रम बिस्तरे पर नफ्स, तो उन लोगों ने तो नफ्स की बात मानी थी, सारी सारी रात जागे नफ्स की मुखालफत में जागे, सारी जिंदगी उन्होंने कोई मीठी चीज नहीं खाई नफ्स की मुखालफत में नहीं खाई, सारी जिंदगी गोश्त नहीं खाया नफ्स की मुखालफत में नहीं खाया, तो फिर कैफियत क्या मिली कि नबी की ज़ियारतें शुरू हो गई, चाहते तो हम भी हैं चाहते हम भी हैं लेकिन तरीका अख्तियार नहीं करते दोस्तों, करेंगे ये तकलीफ नहीं मैं कर रहा, ये तो प्यार की बातें बता रहा हूं। तो वह क्या हुआ था जब अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए कि अली मुर्तजा क्या थी गए क्या हो गया तुझे भूखा पड़ा है तूने एक हफ्ते तूने खाने नहीं खाया मुझे पता चला, तुमने बताया नहीं किसी को। फिर हजरत ने फिर जवाब दिया कि या रसूल मेहमान आपका और लोगों को बताऊं। सुभान अल्लाह, चलिए शायद आप तक भी पहुंच जाए हजरत की कैसे पकसा नाम हुई बात, हजरत की बात कहते अच्छा कि मैं मेहमान आपका हूं और बताऊं लोगों को, मैं नहीं बताता किसी को, बेसिकली मैं एक साल भी रहूं तो भूखा रह लूंगा। हजूर नबी हम मुस्कुराए कहते अच्छा ये बात है। आपने अपने जेब से ज़ियार निकाला और हजरत की मुट्ठी में डाल दिया। हजरत फरमाते हैं जब मेरी आंख खुली, अब आंख खुली आंख बंद हुई तो मैंने देखा मेरे हाथ में वो ज़ियार था। नबी हम देखेंगे अब वो क्या ज़ियार होगा, वो तो जन्नत का खजाना होगा, वो तो खत्म ना होने वाली दौलत होगी मेरे भाइयों। दुनिया का रियाल तो यहीं तक चलना था, ये तो मैं खैर जाके कैश जन्नत में होगा। अल्लाह इसका क्या देता है, इस रियाल की कीमत जन्नत में मुझे क्या मिलेगी, क्यों कि मैं यहां कैश कराने के लिए रखा था। ये तेरे प्यारे हबीब के हाथ से दिया हुआ रियाल है, ये कोई बैंक नहीं वहां कैश कर सकता था दुनिया के अंदर, आप कैश करें आज मेरे लिए। बोले सुभान अल्लाह, बांसुरी आ जाती है। एक बुजुर्ग थे, अब हजूरी की दो किस्से सुना के फिर हम जिक्र शुरू करते हैं, जो जो मेरे जहन में आते हैं मैं आपको बताता हूं। ये दोनों वाक्य बिल्कुल सच बताऊंगा। मदीना मुना तशरीफ ले गए, उनके नाम मैं भूल जाता हूं बुजुर्गों का, मैं बताऊं तो आप शास्त्र तो शेख भी साथ थे उनके, तो वो बीमार हो गए सख्त, बहुत सख्त बीमार हुए, सादात में से थे, सख्त बीमार हुए, इतने बीमार हुए कि बस पता ही चला कि अब जान कुनी का वक्त आ गया। तो उन्होंने अपने हजरत को पैगाम भेजा कि मैं तो अब नहीं आ सकता हजरत, और मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है उठना भी, और मैं बहुत मज़द चाहता हूँ, मैं आपकी ज़ियारत के लिए मैं आप तक नहीं पहुँच सका, आपकी कदम बोसी नहीं कर सका। आप फिर हुई क्योंकि बाहजूर लोग थे ना वो, तो माशाल्लाह कहते हैं कि अभी मैं लेटे तो मैंने क्या देखा आए या ख्वाब, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वो जानते हैं। तो देखा मैंने नबी करीम से तशरीफ ले आए, हजरत उमर साथ हैं, हजरत अबू बकर सद्दीक साथ हैं और हजरत फातिमा साथ हैं रज़ी अल्लाह तआला। तो मैं गौर से उनको देख रहा हूँ, उसके पीछे कुछ सहाबी हैं, तो मैं जोशी मोहब्बत के अंदर एकदम खड़े होने की कोशिश की कि मैं खड़ा होकर इस्तकबाल करूं नबी पाक का, लेकिन मुझ में ताकत नहीं थी, मैं गिर गया। आपने उसने मुस्कुराए और मेरे करीब हुए और कहा कि तुम बीमार हो गए हो, कि यहाँ मैं बीमार हो चुका हूँ, दुआ की अल्लाह तुम्हें शिफा दे। और फिर इशारा किया गालिब अबू बकर सद्दीक की तरफ या हाथ उमर की तरफ, और एक किताब और एक पेंसिल मंगवाई उन्हें। सुभान अल्लाह, कहते हैं किताब और पेंसिल आ गई, तो कहते हैं लिखो अबू बकर का कि लिखो, अब वो लिखने की पेन ली और कॉपी पे लिख रहे हैं, कहती इसकी उम्र 20 साल हमने बढ़ा दी है, 20 साल इसकी उम्र हमने बढ़ा दी है। और फिर हाथ उठाए दुआ करके चले गए। कहते मैं होश आया, मुझे होश में होंगे तो होश से भी आया, मैं देखा बिल्कुल तरोताजा, मैं हाथ पाथ हिलाए अपने अल्हम्दुलिल्लाह, तो अजीब कैफियत मैंने महसूस की अपनी, तो क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका था, मैं देखा कुंडी खड़ी कर, देखा शेख मेरे तशरीफ ले आए, पहले नहीं आए पूछने, शेख भी तशरीफ ले आए दो आदमी उनके साथ। तो मैं फिर उठना कोशिश की, तो फिर मैं उस वक्त भी ना उठ सका, बेहद कमजोरी थी उस वक्त भी, तो वो मेरे सामने आया आके हाँके हंसने लगे मुस्कुराए, कहते हैं वाले को 20 साल जिंदगी आपकी बढ़ गई है माशाल्लाह। मुरीद का मामला शेख को कैसे ना पता चले, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई ये क्या चीज थी, सिर्फ नफ्स कहते थे, कहते पहली पहली बातें नफ्स की बात भी मालूम, मान हम बात मानते हैं, कितनी मजा आता है मुझे आप बताए, कितना नापायदार मजा हो, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं, थोड़ी देर में मजा खत्म हो चुका होता है, मिलता कुछ भी नहीं। अगर हम नफ्स को छोड़ दें तो मुझे बताएं कितनी जबरदस्त चीजें इंसान को मिलती है। इसलिए एक और बुजुर्ग की बात बताता, देखते हैं मैं सख्त बीमार हो गया, जब ऐसे लोग बीमार होते हैं तो फिर हम तो कहते हैं आयात करने, जो आयात करने उससे पहले आयात हो चुकी होती है उनकी माशाल्लाह, पूछने वाले आ चुके होते हैं बुजुर्गों, कहते मैं बीमार हूं तो मैं क्या देखता हूं, सुभान अल्लाह, कि मेरे दरवाजे में से, दरवाजे से बाहर देखता हूं तो परिंदे नुमा आदमी है जिसके जिस्म और अजीब किस्म के, जैसे बहुत बड़े बड़े खूबसूरत परिंदे होते हैं, वो जैसे ही मेरे दरवाजे में दाखिल हो रहे हैं तो इंसानों की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं, और मेरे कमरे थी जगह नहीं थी, वो हजूम लेकिन उसमें पैक्ट हो जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, जगह बनी जा रही है, बैठते जा रहे हैं। तो उसके बाद देखा एंड में एक बहुत ही नूरानी शख्सियत आई तो सब एहतराम से खड़े हो गए और वो नबी करीम सलम के साथ करा गए। आप आए, शीश लाए, मेरे करीब हुए और कहने के मुझसे मुखातिब नहीं, साथ उनके, अब ये पता नहीं कौन थे उनके साथ मुखातिब हैं, कि मुझे तीन आदमी के लिए यहाँ इयादत के लिए भेजा है इस बस्ती में, उन्हें सुभान अल्लाह। ये दूसरी दुनिया की बातें कर रहा हूँ बोल्टन वालों, ये होता है, हकीकत है ये, अल्लाह के नबी इसी तरह आते जाते रहते हैं, सुभान अल्लाह। कहते हैं तीन आदमी की आयत के लिए मुझे भेजा है इस बस्ती के अंदर, नाम लिए आपने, दो और लोगों के नाम लिए और तीसरा मेरी तरफ शराफ फरमाया कि मैं इसके लिए भी आया, वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उसे इसके लिए भी मैं आया। तो मैं सोचा कि पहले मैं इसके शुरू करता हूँ, उससे काम करीब हुए कि तुम बीमार हो गए, कहाँ आप आगे बढ़े, अब बढ़ने के बाद माथे पे हाथ रखा और उसके बाद कलमे पढ़े, मैं आपको कलमे नहीं बताऊंगा जब तक कि आप पक्के सुन्नत में अमल नहीं, जो बंदा सुन्नत में अमल करेगा ये दुआ मैं उसको बताऊंगा इंशाअल्लाह, दुआ मुझे वो याद है अल्लाह के फजल से, मुझे याद है अल्लाह के फजल से दुआ, मैं तो रट ली हूँ, माथे पे हाथ रखा मेरे और वो दुआ पढ़ी आपने, पांच छह लफ्ज उस दुआ के, सुभान अल्लाह, जो मेरा पक्का दोस्त बनेगा उसको बताऊंगा, औरत या मर्द, पक्का दोस्त कौन, जो नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक चलेगा और नफ्स की मुखालफत करेगा। देखें ये इनामात मिलते हैं इतने बड़े, उन्होंने मतलब हाथ रखा, हाथ रख के आपने धोपड़ी हाथ जैसी ऊपर उठाया तो कहते हैं जिस्म का नूर ऐसा हो गया पूरे जिस्म के जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ था, मैं मुंह से एकदम नहीं कहा कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। तो दूसरे साबित हैं कि या रसूल अल्लाह, ये अगर दुआ पढ़ी जाए, कोई भी दुआ पढ़ सकता तो ये हो सकता है, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात तुमने की, जो भी पढ़ेगा उसके लिए ऐसे ही होगा। वैसे आज तक मैंने किसी के मातृ की दुआ पढ़ी नहीं है मैंने, लेकिन असर बहुत है इसका, ये जो देखा है बता जो आपको काफी, तो कितना बड़ा नाम दिया अल्लाह पाक ने भी बताया। तो ये इस दुनिया को हासिल करना चाहते हैं सूफियों, तो एक ही इबादत करो बस, कौन सी इबादत है वो, नफ्स की मुखालफत करो, बाकी सब ड्रामे छोड़ दो, हमने ये किया हमने फलां किया, नहीं नहीं बस इतना देखो कि बंदे तूने आज नफ्स के साथ कितने तआमुल किया, नफ्स के साथ कितनी मोहब्बत तू करता रहा, तुझे हराम वो खिलाता रहा, तुझे झूठ वो बुलाता रहा, तो बकवास तुझसे वो करवाता रहा, बेपर्दियाँ तुझसे उसने करवाई, और तकबर से काम तुझसे के लिए उजब तूने किया, और भूख और तू इतना कि अल्लाह पे तवक्कुल का नाम ही नहीं तेरे अंदर, वो तो तू ख़त्म ही हो चुका था, परेशान है तू हो जाता है हर बात में, अल्लाह से शिक्र तू शुरू कर देता है, कुछ भी नहीं, सब कौन ये सारी चीज़ें कौन कराता है, मेरे भाई आज का ये सबक है, अल्लाह पाक, मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, आप तो माशाल्लाह मजबूत आदमी हैं, नेक आदमी हैं, जवान आदमी हैं, एक हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं, मेरे लिए भी दुआ करें, हम जैसे लोगों की काम बन जाए इंशाल्लाह, अगर कामयाब होने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इबादत है, और यही 30 दिन इबादत अल्लाह पाक हमसे कराएगा, कौन सी इबादत, नफ्स की, बस जब देखेंगे नफ्स का जीत गया तो बस सर पकड़ के बैठ जाए, फिर नए सिरे से फिर खड़े हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग के, अल्लाह मैंने गलती से इसकी बात मान ली है, मेरे मुँह से ये बात निकला दी, ये मज़ेदार बात करा दी, ये मुझसे गलत काम करा दिया, फलां करा दिया, अल्लाह मैं आता हूँ ये नफ्स वाला काम मैं छोड़ता हूँ, हर वक्त लड़ते रहे नफ्स के साथ 24 आवर हाथ में आप हमारे किस चीज़ की तलवार होनी चाहिए नफ्स को मारने के लिए, सुन्नत रसूल की तलवार हाथ में एकदम हलाल होता है, जहां सुन्नत को लेकर है उसके मुकाबले में नफ्स के मुकाबले में वहीं खत्म हो गया। हज़रत जुनैद फरमाते हैं कि मैं 40 साल तक जंगलों में घूमा हूं इस नफ्स को मारने के लिए, इनके कितने बड़े सैयद ताइफा हैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं 40 साल मैं जंगलों में फिरा نفس خوشی کے لیے کیا کیا عبادتیں میں نے نہیں کی. لیکن دوستوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نفس مرا تو ایک ہی چیز تھی, اور وہ کون سی چیز تھی؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تلوار کو میں نے اٹھایا تو نفس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اللهم صل علی محمد. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.